विलाप गीत अध्याय एक। हम विलाप गीत की पुस्तक में यरमिया के मन के दर्द को देखेंगे जो उसने यरूशलेम के विनाश पर प्रकट किया। तो आइए हम अपनी बाइबल में विलाप गीत निकालें। विलाप गीत की पुस्तक का स्थान इब्रानी बाइबल में उस जगह पर नहीं है जहां उसका स्थान हमारी बाइबल में है। इब्रानी धर्मशास्त्र में ये एस्तर, रूत, आयुब और एज्रा के साथ आती है। मुख्यतः ये यरमिया के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में ये यरमिया के बाद रखी गई है, क्योंकि ये यरमिया की पुस्तक का उपसंहार है जिसमें यरूशलेम के नष्ट होने का वर्णन है। गुलगुता के पास एक गुफा है जिसको यरमिया की गुफा कहा जाता है। ये खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में इसे गुलगुता कहते हैं। जब हम उन ऊंची चट्टानों को देखते हैं तो गुफाएं जो ऊंची चट्टानों पर है वे एक खोपड़ी के जैसी दिखाई देती है। गुलगुता की गुफाओं से यरूशलेम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि गुलगुता असल में वो चोटी है जिसे मोरिया पर्वत कहते हैं, जहां से यरूशलेम शहर को देखा जा सकता है। यहूदी परंपरा के अनुसार यरमिया ने इस गुफा में बैठकर विलाप गीत की पुस्तक लिखी थी। यरमिया वहां बैठकर यरूशलेम शहर के नष्ट होने पर विलाप करता था। उसने उजड़े हुए शहर, गिरी हुई दीवारों को और टूटे हुए भवनों को देखा। इसी दर्द में उसने ये पुस्तक लिखी। सेप्टुएजिंट पुराने नियम का यूनानी अनुवाद था। 200 ईसा पूर्व 70 इब्रानी विद्वानों ने इस पद को विलाप गीत के अमुख में लिखा था। और ऐसा हुआ जब इसराइल गुलामी में चला गया और यरूशलेम उजड़ गया, यरमिया रोने और विलाप करने बैठ गया और यरूशलेम के बारे में इस प्रकार कहा, ये शहर कैसा वीरान पड़ा है। धर्मशास्त्र को लतीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद इस वचन वल्गेट को विलाप गीत में प्रस्तावना के तौर पर रख दिया। विलाप गीत के पहले चार अध्याय की लेखन शैली इब्रानी कविता के जैसी है, जिसमें एक ही स्कूती हर चंद में दोहराई जाती है, जिससे कि पाठक को इसे याद करने में आसानी हो। इसके पहले तीन अध्यायों में 22 पद है। इब्रानी की मूल कविता में ये 22 पद 22 लाइन के थे और हर लाइन आने वाली इब्रानी वर्णमाला से आरंभ होती थी। इसलिए पहली लाइन आलेफ, फिर बेत, फिर गिमेल और फिर डलेत, और इसी तरह ये कविता पहले दो अध्यायों में इब्रानी वर्णमाला के क्रम में चलती है। तीसरे अध्याय में 66 पद है। पहली तीन लाइनें आलेफ से, अगली तीन लाइनें बेत से और अगली तीन लाइन गिमेल से आरंभ होती है, और इस तरह तीन तीन लाइनें लिखी गई थी जो वास्तव में 66 पद बनाती है। चौथा अध्याय फिर क्रम अनुसार इब्रानी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। पांचवें अध्याय में भी 22 पद है, परंतु वो नियम अनुसार नहीं लिखा गया है। वो इब्रानी भाषा के अक्षर माला के अनुसार नहीं लिखा गया है। यहूदी कविता को इसी रूप में लिखा करते थे ताकि याद करने में आसान हो। ये एक अंतिम संस्कार में गाए जाने वाला गीत है। यरूशलेम के नष्ट होने के बाद यरमिया का विलाप है। ये पुस्तक यहूदी प्रार्थना घरों में प्रतिवर्ष नवे महीने के चौथे दिन पढ़ी जाती है। लगभग सितंबर 4 तारीख को ये विलाप गीत की पुस्तक यहूदियों के प्रार्थना घरों में सुलेमान का मंदिर जो 586 ईसा पूर्व नष्ट हुआ उसकी वर्षगांठ की याद में पड़ी जाती है। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम पहले अध्याय में चलते हैं जहां यरमिया कहता है, विलाप गीत अध्याय 1:1, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है, वो क्यों एक विधवा के समान बन गई, वो जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। शहर खाली पड़ा है, वो अकेली बैठी है। नागरिक या तो मार दिए गए थे या गुलामी में चले गए थे। ये सुंदर और समृद्ध शहर था, उसमें अब अजीब खामोशी है और वहां मलबा ही मलबा है। विलाप गीत अध्याय 1:2, रात को वो फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं, उसके सब यारों में से अब कोई शांति नहीं देता, उसके सब मित्रों ने उसे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यरूशलेम कभी राजकुमारी की तरह था, सुलेमान और उसके राज्य को कभी भेंट दी जाती थी, परंतु अब यरूशलेम को दूसरों को भेंट देनी पड़ रही है, जिस पर उसने भरोसा किया मिस्र और अन्य सब उसके दुश्मन हो गए। विलाप गीत अध्याय 1:3-4, यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वो चैन नहीं पाती, उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी साकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग या पथ विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। जो एक समय का महान और समृद्ध शहर था, उसके कंडरों को देखना बड़ी दुखदायी बात है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी पर्वत पर बैठे हैं और आपके नगर में कोई दिखाई नहीं देता है, कोई भी सड़कों में नहीं है, किसी भी फैक्ट्री या उद्योग घर से धुआं नहीं निकल रहा है, सब कुछ मृत्यु के समान खामोश है। सोचिए, आपने शहर की गतिविधियों को देखा है और अचानक आप शहर में सन्नाटा और वीराना देखते हैं। ऐसा दृश्य आपके मन को विचलित कर देगा। यरमिया के साथ ऐसा ही हुआ था कि इसी शहर में उसका पालन पोषण हुआ था। उसने सड़कों में लोगों की भीड़ को देखा था, उसने मंदिर में आराधकों को देखा था, उसने यात्रियों को पर्व मनाने के लिए जमा होते देखा था, लेकिन अब सब शांत है, सब खाली है और यरूशलेम को जाने वाले रास्ते उजाड़ है। कोई भी समारोह मनाने वाला अब वहां नहीं आता। विलाप गीत अध्याय 1:4 में आगे लिखा है, उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। यरूशलेम के फाटक बड़े ही रुचिकर स्थान थे, क्योंकि इन फाटकों से बहुत लोग अंदर बाहर आया जाया करते थे। यदि आपके पास कोई काम ना हो तो आपको शहर के मुख्य द्वार पर बैठकर लोगों को आते जाते देखना बड़ा अच्छा लगेगा। जहां पहले हलचल रहती थी अब खामोशी है, नगर द्वार सुनसान पड़े हैं। विलाप गीत अध्याय 1:4-5, उसके याजक कराते हैं, उसकी कुमारियां शोकित है और वो आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। और तब वो कारण बताता है। विलाप गीत अध्याय 1:5-8, उसके बाल बच्चों को शत्रु हांक हांक कर बंदवाई में ले गए। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है। उसके हाकिम ऐसे हिरनों के समान हो गए हैं जो कुछ चराई नहीं पाते, वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मन भावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देकर ठट्टों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वो अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। यरमिया ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। यही हम प्रायः चूक जाते हैं। जब हम पर विपत्ति आती है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर ने हम पर ऐसा क्यों होने दिया? असल में गलती लोगों की ही थी, क्योंकि उन्होंने अपराध किए और परमेश्वर के सम्मुख घोर पाप किए, इसलिए यरूशलेम अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। विलाप गीत अध्याय 1 पद 8 से लेकर 10 तक। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हां, वो कराती हुई मुंह फेर लेती है, उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण ना रखा, इसलिए वो भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी सब मन भावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हां, अन्य जातियों को जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी ना होने पाएंगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। अन्य जातियों ने अति पवित्र स्थान में घुसकर परमेश्वर के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अन्य जातियों को भवन में आने की मनाही थी। यरमिया ने अन्य जातियों को मंदिर के अंदर आकर मंदिर को नष्ट करते देखा था। विलाप गीत अध्याय 1 पद 11। उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन भावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूं। उन्होंने भोजन के लिए अपना सारा धन और मन भावन वस्तुएं समाप्त कर दी थी। विलाप गीत अध्याय 1 पद 12 से लेकर 16 तक। हे सब बठोइयों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा फेर दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूं। उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बांटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है। जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व पर प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूं। इसलिए यरमिया विलाप करता है और रोता है कि उसने ये विनाश देखा। पराक्रमी पुरुष नाश हो गए, कुमारी कन्याओं के साथ बलात्कार किया गया, जवानों को पीसा गया, लड़कियों को रौंदा गया। इन बातों के कारण मैं रोती हूं। विलाप गीत अध्याय 1 पद 16 से लेकर 18 तक। मेरे आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वो मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में ये आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाएं। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारिया बंधुआई में चली गई है। यरमिया यरूशलेम को मानव रूप में देखता है और यरूशलेम को परमेश्वर के न्याय में धार्मिकता की पुकार के लिए कहता है, प्रभु धर्मी है, क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के दोषी थे। परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है और इसी स्थान पर हम परमेश्वर में दोष देखते हैं। हम सदैव सुनते हैं कि परमेश्वर न्याय करने में अधर्मी है। कैसे प्रेम करने वाला परमेश्वर मनुष्य को नरक में जाने देता है, और ऐसी बहुत सी बातें हम सुनते हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर न्याय करने में सच में धर्मी नहीं है, लेकिन इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में इसका उल्लेख है। वहां वेदी से आवाजें आती है, हे प्रभु तेरा न्याय पवित्र और सत्य है। और एक स्थान पर जहां परमेश्वर पृथ्वी पर निर्मल पानी को खून में बदल देता है, आवाजें ये घोषणा करती है, और वो महान है, उन्होंने तेरे पवित्र जनों का खून बहाया, इसलिए अब तू उन्हें खून पीने को देता है। और गवाही देते हैं कि परमेश्वर जो न्याय पृथ्वी पर लाता है वो ठीक है, परंतु परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर ने घोषणा की है कि वो न्याय करेगा। विश्वास करो कि वो इस संसार का न्याय करेगा। परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा, लेकिन जब वो न्याय करेगा पूरी धार्मिकता के साथ करेगा। इसके बारे में लोग शिकायत कर सकते हैं, परंतु जब वो न्याय करेगा तब कोई शिकायत ना करेगा, क्योंकि वो धर्मी है। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और उसकी आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने कहा, विलाप गीत अध्याय 1:19, मैंने अपने मित्रों को पुकारा परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। वे भोजन की तलाश करते करते भूखे से मर गए। विलाप गीत अध्याय 1:20 से लेकर 22 तक। हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूं, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वंश होती हूं और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराती हूं, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरे विपत्ति का समाचार सुना है, वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने ये किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराती हूं और हृदय रोग से निर्बल हो गया है।